શ્રી સમયસાર કળશ 180 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 12 મૂળ કેસેટમાં હમિંગ છે.
ज्ञान मोक्ष अधिकार है, रूप में ज्ञान कर लेता है, ऐसे सम्यक ज्ञान के महिमा आचार्य से मंगलाचरण के चरण में करेंगे। मान लीजिए तो कपड़े जैसे बदल जाते हैं, कपड़े कितने भी अच्छे हो, ये भी समय समय पर बदलता है। सिद्ध अवस्था में समय समय पर बदलता है, एक बदलती है अपमान के रूप में, पर दूसरा और नया स्थान आया, नया कपड़ा आया। जीव की अवस्था में एक नई बात आई है, पहले वो बात नहीं थी, हाँ जैसे वर्तमान तक ये बात नहीं थी, जहाँ तक मोक्ष की अवस्था नहीं हुई। स्वभाव प्रकट हुआ, लेकिन स्वभाव स्वभाव के रूप में तो रहा, और यहाँ जो अवस्था प्रकट हुई उसकी बात ले रहा है। भले वो स्वभाव रूप है, लेकिन प्रकट हुई है वो अवस्था है। भीमसेन जी अनुभव प्रकाश में कहते हैं कि ये प्रकट अप्रकट दोनों अवस्था भेद है। पहले मोक्ष की दशा प्रकट नहीं थी, अब मोक्ष की दशा जो है वो प्रकट हुई। पहले मोक्ष की अवस्था प्रकट नहीं थी तो अप्रकट थी, वो प्रकट हुई। तो प्रकट अप्रकट तो अवस्था भेद है, वस्तु का स्वरूप में प्रकट अप्रकट पना लागू नहीं होता। यानी स्वभाव में, स्वभाव तो दोनों अवस्था में जैसा है वैसा है। क्या लिखते हैं, स्वभाव जैसा था वैसा भी है। मोक्ष अवस्था प्रकट हुई तब भी स्वभाव जैसा था वैसा ही होती है। नया वेश जीव ने धारण किया, पहले संसार अवस्था का वेश पहना हुआ था, वो उतर गया, नया वेश पहना। प्रगत अप्रगत अवस्था भेद है, दोनों अवस्था में स्वभाव जैसा था वैसा ही है, ऐसी श्रद्धा सुख का मूल है। क्या लिखते हैं, इस स्वभाव की श्रद्धा करना, माने ऐसा मैं हूं ऐसा श्रद्धा में ग्रहण होना, ये सुख का मूल है। इसका प्रयोजन है, हमें इस सुख का हमें प्रयोजन है, ये सुख का मूल। तो इस प्रकार सम्यक ज्ञान जानता है, इस प्रकार से जो ज्ञान सम्यक हुआ, आत्मा भी हुआ, वो जानता है कि सभी अवस्था जीव की सभी अवस्था एक स्वांग ही होती है। ये मध्य विकल्प पूरा किया, तो ये भी एक स्वांग था जिसका वर्णन किया। तो मोक्ष अवस्था चालू किया, मोक्ष अधिकार चालू किया, वो भी एक स्वांग है। बंध भी एक स्वांग है, मोक्ष भी एक स्वांग है, संसार भी स्वांग है, संसार में मोक्ष भी स्वांग है। पहले ही कहा कि ये समय सार नाटक है, एक नाटक का रंगमंच है, इस पर मांग लेकर सभी तत्वों जो जो अवस्था है को प्रवेश करके आते हैं और सभी ज्ञान उसको जान लेता है, सभी ज्ञान उसको जानता है जैसा है सब रूप में स्वांग ही है, स्वांग ही है। कुछ वैष्णव ने वैष्णव रूप में लिया है, तो स्वामी स्वामी है ऐसा कहकर के क्या कहना है? हमारा तो ध्यान वहां जाना चाहिए कि ऐसा कहने के पीछे अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाहते हैं, इरादा क्या है आचार्य जी का। गुरु वो कहना चाहता कि तेरे तेरा जो स्वरूप मूल स्वरूप है वो इससे कोई भेद नहीं, मूल स्वरूप पर ध्यान दिलाने की बात है उसमें, इसलिए मोक्ष को भी स्मरण कहते हैं। यही कारण स्वरूप का लक्ष्य कर दिया। हाँ लोग कहते हैं निधा कृत्य प्रज्ञा कृकच दलना बंध पुरुषो नयन मोक्षम साक्षात पुरुषम कुबलम वेग नियतम इदानी गुणवज्जत सहज परमानंद सरसम परम पूर्णम ज्ञानम कृत सकल कृत्यम विजयते। अब बंध पदार्थ के पश्चात बंध अधिकार चला गया ना, वो पदार्थ का पूरा अधिकार चला गया। इदानी बंध अब मैंने बंध पदार्थ की बात करने के बाद प्रज्ञा रूपी पर्वत से विदारण द्वारा बंध और पुरुष को द्विधा भिन्न भिन्न करके पुरुष को किसी पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, उसे साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। क्या कहते हैं कि प्रज्ञा रूपी करवत के उदाहरण द्वारा ये प्रज्ञा क्या थी, जो ज्ञान की अवस्था अंतर्मुख भी उसको यहाँ भगवती प्रज्ञा करनी है, इसी अधिकार में उसको एक विशेषण भी लगाया गया कि प्रज्ञा ही नहीं है भगवती माने एक पवित्र ज्ञान की दशा है जो बंध और आत्मा को विदारण करके भिन्न करके विदारण करके माने बंध से छुड़ा करके भिन्न भिन्न करके दो करके आत्मा को पुरुष नाम या आत्मा लेना उसका प्रयोग इस प्रकार से है, इस कारण से है कि जो आत्मा अपने चैतन्य वीर का सम्यक प्रयोग करता है ऐसा जिसमें प्रधान परिणम है उसी को पुरुषार्थ करने वाला पुरुष कहा जाता है, चाहे वो स्त्री हो कर्मजनित अवस्था लेकिन ये पुरुष है। पुरुषार्थ करने वाला ही पुरुष है, जो पुरुषार्थ नहीं करता है यानी जिसका पुरुषार्थ राग की रचना में लगता है उसको यहाँ पुरुष कहने में नहीं आता, इसलिए पुरुष आप पुरुषार्थ करने वाला आत्मा परिभाषा ऐसे दिया है जो 47 शक्तियां है गुण है इसमें वीरी गुण की परिभाषा ऐसे ही की है कि जो स्वभाव की रचना करता है उसको ऐसे परिणाम करने वाले गुण को हम यहाँ वीर शक्ति कहने में आई है। बंध को और आत्मा को भिन्न करने करके जो आत्मा मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, यहाँ ज्ञान शब्द दे लिया क्या पुरुष उपलम्बन एक नियतम, यहाँ इतना रूप अनुभव है एक का ही आत्मा है, अनुभव से ही निश्चित होता है, जानने से निश्चित होता है, ऐसा नहीं कहा। समय साल में जगह जगह पे वेदन की प्रधानता है, अनुभव ज्ञान की प्रधानता है। जानने की बात है वो तो परलक्ष्य ज्ञान में हो सकती है, लेकिन इससे कोई शांति का लाभ नहीं मिलता, इससे कोई सुख शांति नहीं होगी। आत्मा सुख शांति को अनुभव से ही होगी, इसके अलावा इसका कोई दूसरा पर्याय नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारा जो समय सार जिसको हम नमस्कार करते हैं वो हमारे स्वानुभूति में प्रकाशमान होता है। तो स्वानुभूति प्रधान ही ये ग्रंथ है और उत्तम कोटि के मुमुक्ष को स्वानुभूति कराने के लिए ही आचार्य महाराज सब कुछ कह रहे हैं पूरे के पूरे ग्रंथ में। इसमें हर जगह से देखते हैं ग्रंथ, क्योंकि अगर नीचे के लेवल वाला जी हो तो फिर क्या करना है, ये प्रश्न उठ रहे हैं। हम तो उत्तम प्रभु के मुमुक्षु नहीं है तो फिर हम क्या करें, हम समय सार नहीं पड़े क्या? तो फिर कहते हैं कि ज्ञानी के विश्राम में, ज्ञानी के समीप में इसका अध्ययन करना, तो इसे संभवित नुकसान है वो नहीं होगा, वरना नुकसान संभवित भी है। क्योंकि निर्जराधिकार में तो वहां से अधिकार शुरू होते हैं, सम्यक दृष्टि जो अविरत है, जिसको कोई त्याग व्रत प्रतिष्ठान नहीं है। आचार्य महाराज क्या था, यहाँ से चालू करते हैं तो आचार्य सम्यक दृष्टि का भोग निर्जरा का हेतु है, भोग तो पाप का हेतु होता है, सारी दुनिया जानती है। अधिकार व्रत को गले उतारे कैसे, बात इतनी बड़ी है और हमारा गला इतना छोटा है, दिमाग छोटा है, बात बहुत बड़ी है। कई कई बातें उसमें ऐसी पतंग आती है कि अगर कोई नीचे कोटि वाला मनुष्य उसका अध्ययन स्वयं करने को जाएगा तो निश्चयाभाषी हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, संभव भी है। खुलासा कर दिया है लेकिन उसका स्पष्टीकरण अंदर में जमना, एक तो अनादि को जीव की उनकी रुचि तो है ही, उनको राग की रुचि है, पाप की रुचि है, और ऐसे कोई बात शास्त्र में मिल जाए तो वो तेजी से पकड़ता है, पकड़ लेगा, योग्यता ऐसी है तो उनके लिए
कहीं
दृष्टि से ही कथन है कि भले ही ऐसी परिस्थिति में भी वो निद्रा करता है तो किस तरह से करता है, इसके परिणमन के तत्व को तुम पहचानो तो तुमको उसकी महिमा आएगी। अरे ऐसी भी बात है तो और महिमा आएगी, लेकिन जो इसकी योग्यता में है उसके लिए वो बात है, अगर योग्यता में नहीं है तो इसके लिए वो बात छुट्टी कर सकती है। दर्शन मंत है, दृष्टि मंत है, इसकी भी महिमा बताइए। उसमें ही कहेंगे कि जो सम्यक दृष्टि है तो देव है, ऐसा करके दिखा, क्या दिखा देव कहा है, ज्ञान है कि वो अपने आप में बराबर रह करके औरों का जैसा है वैसा ज्ञान कर लेता है, और ज्ञान करने के वक्त हिलता नहीं है, सपने से हिलता नहीं, खिसकता नहीं है। मोक्ष तत्व का ज्ञान भी ऐसे ही करता है। ये जो आत्मपुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, अनुभूति से ही यह निश्चित होता है, दूसरे प्रकार से वो निश्चित नहीं है, उसे साक्षात मोक्षम नयम, साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ कौन? ये प्रज्ञा है, वो उसको भिन्न करके साक्षात मोक्ष कराएगा। इसका मतलब वो है कि जब पूर्ण अवस्था होती है, आखिर तक वेदियान की प्रक्रिया से ही यही एकमात्र प्रोसेस है जो मोक्ष में ले जाता है, साक्षात मोक्षम रहता नयम, नयम मैंने ले जाना, साक्षात मोक्ष प्राप्त कराता हुआ यह पूर्ण ज्ञान जयवंत प्रवर्तता है। ये केवल ज्ञान प्राप्त होता है वो जयवंत प्रवर्तता है। वह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के यानी रस युक्त है, ऐसा जो केवल ज्ञान है कि परमानंद के रस के साथ जुड़ा हुआ है, सम्यक ज्ञान है तो आत्मानंद की मुद्रा वाला है, और केवल ज्ञान है वो परमानंद की मुद्रा वाला है। इसलिए जिसको सम्यक ज्ञान होता है वो अपने आप में आनंद का, आत्मा के आनंद का अनुभव करता है, और इसे सम्यक ज्ञान नहीं है, और शास्त्रों का ज्ञान शास्त्र के बराबर ठीक जैसा कैसे कहता है वैसा ही अर्थगठन रूप है, लेकिन इसमें आनंद साथ में नहीं है, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान ज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान को तो आनंद की मोहर लगती है, जबकि मिथ्या ज्ञान में आनंद नहीं होगा, चाहे अनुपूर्व का ज्ञान हो लेकिन उसका आकाश में आनंद नहीं होता। ये आनंद है एक जीव की ऐसी प्रॉपर्टी है, इसकी मिलकत है कि इसका खिंचाव आता है जीव को स्वयं को, तो सभी परिणाम क्यों अपने आप में सभी गुणों के परिणाम रखते हैं मोक्ष मार्ग के, धर्मात्मा को मोक्ष मार्ग को क्यों रखते हैं? कि आनंद का उसको खिंचाव है, अंदर में अनंत आनंद भरा है, असीम आनंद भरा है, जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसा बेहद आनंद भरा है, उसके प्रति खिंचाव होता है, और खिंचाव होता है और परिणाम में भी आनंद जो है वो चालू होकर के आस्ते आस्ते बढ़ करके पूर्णानंद को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष अवस्था में। यह ज्ञान प्रकट होने वाले सहज परमानंद के द्वारा रसयुक्त है, परमानंद का रस इसमें साथ में है, उत्कृष्ट है, परम है, परम मैंने सर्वोत्कृष्ट है, परम उत्कृष्ट है, और जिसने करने योग्य समस्त कार्य कर लिए हैं तो कुछ करने का बाकी नहीं रहा। कृत सकल कृत्यम, कृतकृतिक जिसको कहते हैं, सकल कृत्य सभी करने योग्य हो गया, कभी कुछ करने का बाकी नहीं रहा, कर लिए हैं जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है, ऐसा है। ये सम्यक ज्ञान की महिमा किया कि जो मोक्ष में पहुंचाता है, भावार्थ है कि ज्ञान बंध और पुरुष को पृथक करके पुरुष को मोक्ष पहुंचाता हुआ अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके जयवंत प्रबंधता है, ये सम्यक ज्ञान है यानी प्रज्ञा है, वो बंद और पुरुष को भिन्न भिन्न करता है, आत्मा को अपने आप रूप अनुभव करता है, बंद का वो छेद करता है, ऐसा करके व्यवच्छेद करके आत्मा को मोक्ष पहुंचाता हुआ, आत्मा को मोक्ष पहुंचाता हुआ, देखो आत्मा का मोक्ष किया शैली है, दूसरी कथा से भी शैली दिया जाता है, क्यों उसके सुनने वाला पर्याय प्रधानता में खड़ा है, इसलिए उसी की भाषा में उसको समझाते हैं आत्मा मोक्ष को पहुंचा है। वैसे द्रव्य परिणाम को करता है, पर्याय द्रव्य में एकाग्र होती है और द्रव्य पर्याय में परिणमित होता है, जैसे एक वृक्ष है वो पनपता है, डाली से फूल से फल से पत्ते से पनपता है, वैसे आत्मा अपने गुण पर्याय में फैला हुआ है, तो आत्मा मोक्ष आत्मा को ज्ञान ने मोक्ष में पहुंचाया। आत्मा को मोक्ष पहुंचाता हुआ अपना संपूर्ण स्वरूप प्रकट करके ज्ञान दे प्रकार ज्ञान की सर्वोत्कृष्टता का कथन ही मंगल वचन है। ऐसे सम्यक ज्ञान की जो प्रवृत्ति है ये बहुत मंगलमय प्रवृत्ति है, आत्मा को सुख देने वाली है, शांति देने वाली है, आनंद देने वाली प्रवृत्ति है। ऐसा अधिकार के प्रारंभ में मंगलाचरण करके अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं, किसी भी जीव को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं, उसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है वह तो मोक्ष प्राप्त नहीं करता। ये बंध का विषय कहाँ आता है, कर्णात्मक रूप के साहित्य में बंध का वर्णन आता है, बंध कैसे होता है, किस कारण से होता है, कितनी स्थिति पड़ती है, कितना अनुभाग होता है, कितना प्रदेश है, सात प्रकार के प्रदेश कैसे कैसे प्रकृति बंद होते हैं, प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभाग और इनका उदय उत्सव और क्षणोत्सव जो भी कर्म परमाणु है उनके, ऐसी इनकी सभी प्रकार की अवस्था को व्यवस्था को उसका भी विज्ञान है, उसको जानने मात्र से जो संतुष्ट होता है उसको कभी बंध का अभाव हो करके मोक्ष नहीं होता। जानने वाला कर्णादियों को जानने वाला भी ज्ञान है, लेकिन ऐसे जानने से जो संतुष्ट होता है उसको तो बंध का नाश नहीं होता। कहने का अभिप्राय यह है कि बंध का ज्ञान से क्या फायदा हुआ, बंध का ज्ञान से बंध का अभाव नहीं होता, जानने मात्र से कोई अभाव नहीं होता, और यह संतुष्ट शब्द को लेकर के ऐसा कहा कि जो जानकारी से संतुष्ट होता है, पहले मैं ऐसी ऐसी बातें नहीं जानता था, अभी शास्त्र स्वाध्याय करके मैंने ये सब बातों को जानी, ऐसा संतुष्ट बना जान करके आता है, ये संतुष्ट बना दर्शन मोह को वर्तमानता को दर्शन मोह की वर्तमानता को सूचित करता है, तो दर्शन मोह इसका बड़ा क्या पढ़ा उन्होंने, ये कोई दुनियादारी के साहित्य नहीं पढ़ा है, उपन्यास नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा क्या कि कर्मानु योग के शास्त्र पढ़ा। कर्मानु योग को शास्त्र को भी जिनवाणी कहते हैं, सारों योग जिनवाणी है, प्रणाम योग भी जिनवाणी है। होना चाहिए था, लेकिन कब ऐसा होना चाहिए, यथार्थ पद्धति से होवे तो स्वाध्याय भी परलक्षी ज्ञान में यथार्थ पद्धति से होता है तो दर्शनों पढ़ते पढ़ते ही बढ़ जाता है। तो बढ़ गया, इसका कौन सा चिन्ह है, इसका सिम्टम क्या है, संतुष्ट हुआ वो। इसलिए यहाँ एक शब्द लगाया है जैसे जी ने, जो तो संतुष्ट होता है मैंने पर्याय बुद्धि वही पर समय है वो तो प्रवचन का प्राण भाषा में बताया, पर्याय मुंडा पर समय, तो पर्याय मात्र में संतुष्ट है, चाहे वो व्रतादि के आचरण के पर्याय हो तो चारित्र गुण का सूक्ष्म है, चाहे तो अंग पूर्व का ज्ञान ज्ञान गुण का सूक्ष्म, दोनों गुण का सूक्ष्म होता है। श्रद्धा तो उल्टी पड़ी है अनादि, तो ज्ञान और चारित्र दोनों गुण में सूक्ष्म होता है तो शास्त्र ज्ञान बढ़ जाता है ज्ञान गुण के परिणाम में, और आचरण के परिणाम में व्रतादि का ग्रहण संयम आदि का ग्रहण होकर के जो भी अवस्था मुनि दशा तक थी, मुनि दशा में दीक्षा अंगीकार करके द्रविड़िंगी तक पहुंचता है। ये दोनों जीव की अगर कोई गड़बड़ वाली अवस्था भीतर में है तो वो है कि वो अपनी उस अवस्था से संतुष्ट है, और यही मिथ्या संज्ञा को बलवान करता है। ऐसा करता हुआ भी ज्ञान और चारित्र का सूक्ष्म होता हुआ भी वो मिथ्या संज्ञा को बलवान करता है, उसको चतुर्थ गुण स्थान की भी प्राप्ति नहीं होती है, मोक्ष मार्ग में प्रवेश उसका नहीं होता है। तो हमारा ध्यान न तो ज्ञान के सूक्ष्म पर जाना चाहिए, न तो आचरण के चारित्र के सूक्ष्म पर जाना चाहिए। हमारा ध्यान दर्शन में क्या हुआ, दर्शन हमारा गला, उसका अनुभाग घटा, उसमें कोई फेरफार हुआ या फिर तगड़ा तो नहीं हो रहा है, चलता है बराबर चलता है। जब पूर्व दर्शन बलवान होता है तो उसका संतुष्टपना बढ़ता है और उसका स्वच्छंद भी बढ़ता है, और दर्शन को घटने से सबसे बड़ा जो उसके स्वच्छंद है मनुष्य की भूमिका का, यानी सम्यक दर्शन के पहले वाली भूमिका में जो स्वच्छंद का दोष है वो गलता है, और मनुष्य की भूमिका के योग्य ज्ञान में निर्मलता आने लगती है, ये इसका एक प्रकट चिन्ह है, सिम्टम है, जहाँ से पता अपने को भी चलता है और इस लाइन के जानने वाले दूसरे को भी चलता है, सबको भी चलता है। कोई मुमुक्षु, कोई भी मुमुक्षु अपनी मुमुक्षुता में आगे बढ़ता है, मुमुक्षुता उसकी वर्तमान होती है तो उसका दर्शन वो मंद होता है। दर्शन वो मंद होने के बहुत से चिन्ह है, जैसे कि उसका अपनत्व जो है जितने भी अवस्था से लेकर देश से कुंभ से समाज से जितने भी प्रारंभ योग के संयोग में आने वाले पदार्थ से जो भी अपनत्व है वो तो अपनत्व एकदम मंद पड़ जाता है, जल जाता है, उसको लगता है कि मेरा कुछ नहीं है, थोड़ा भी अपनत्व हो जाता है उसका, उसको खेद रहता है हो रहा है। जब मैं इनवाणी से या ज्ञानी पुरुष से इसका बोध लिया कि ये अपनत्व होना, पर में अपनत्व होना यही जीव का भाव मरण है, इसकी मृत्यु है और अनंत द्रव्य मरण का यही कारण है, इसकी भयंकरता को पहचाना है, फिर मेरा एकत्व थोड़ा भी क्यों होता है, होता है मन तो भी उसको खेल रहता है, तीव्र तो होता ही नहीं, जबकि संतुष्ट होने वाले तो उसका कोई पता ही नहीं चलता कि दर्शनों का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ उसको पता नहीं चलता, उसका ज्ञान ही नहीं जाता, तो उसका ज्ञान जाता ज्ञान के शोषण पर या आचरण के शोषण पर, कहीं किसी को दो में दो में जाएगा तो किसी में एक को मिल जाएगा, तो उसको जो करने लायक था वो नहीं किया, नहीं करने लायक वो करने लगा और उसमें संतुष्ट भी होता है, बढ़ाता है और मुख्य मार्ग से दूर चला जाता है, ये इसका स्वच्छंद है, ये जो मनमानी होती है ये इसका स्वच्छंद है, किसी को भी स्वच्छंद कहते हैं, वो ज्ञानी के मार्ग पर नहीं चलता है, ज्ञानी ने पहले क्या किया कि दर्शन को हटाया, ज्ञानी होते हुए भी अविरति क्यों रहा, तो चारित्र में धमाधम नहीं किया, आचरण में धमाधम नहीं किया, देखा तो मेरी जो मनुष्य में मेरी जो शक्ति है बहुत सीमित है, अब मेरी जितनी भी शक्ति है उसको मैं सही जगह पे लगा दू, 500 रुपया का तनख्वाह वाला 450 और 450 का जूता खरीदेगा वो कोई ठीक बात है क्या, ऐसे समय शक्ति तो है नहीं हमारे पास, आयु बहुत कम है, अनिश्चित है, शक्ति भी बहुत कम है, और हम लगा रहे हैं ज्ञान वृद्धि करने में यानी जानकारी बढ़ाने में या तो मृत्यु भी करके संयम आदि करके उसमें लगा रहे हैं, दर्शन मौका क्या तो ज्ञान नहीं जाता, ये गड़बड़ बहुत बड़ी है, इसी का नाम स्वच्छंद है, और जब तक स्वच्छंद रूपी महादोष प्रवर्तता है यानी कहते हैं तो वो अंधा है, अंधा को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ चलता हूँ, अंधा को कोई पता नहीं चलता कि मैं कहाँ चलता हूँ, वैसे ये स्वच्छंद जिसको है उसको खुद को पता नहीं कि मैं कहाँ चलता हूँ, मैं मोक्ष मार्ग के समीप जा रहा हूँ या मैं मोक्ष मार्ग से दूर जा रहा हूँ, उसको पता ही नहीं चलता है,
तो वहाँ
संतुष्ट है, चल तो रहा हूँ ठीक
है,
दो को लू के बेल के घर में कोश हजार कोश चला में कहा तो वहां से वहां चला है, तो इतना ज्ञान किया तो वहां के वहां है, इतना आचरण किया तो वहां के वहां है, क्योंकि उसके विचार में हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा है, और कहना चाहिए कि इसी को ही धर्म जो मानता है या धर्म का कारण मानता है तो ग्रहित विचार में आया है, बुद्धिपूर्वक उसने आत्मकल्याण के मार्ग को अन्यथा ग्रहण कर लिया है, उसको करना कराना अनुभवना सबको ग्रहित विचार लागू होता है, प्रश्न में बढ़ जाता है, ये बात इसलिए ज्ञानी के मार्ग से जो चलना चाहते हैं उसका ज्ञान दर्शन भूमि पर जाता है, दर्शन भूमि को कैसे डाले इसका कैसे अभाव करे कोई उपाय वो करेगा, उसका कुछ हो न हो उसकी कोई मुख्यता वो करेगा, शक्ति हो इससे भी ज्यादा शक्ति हो कुछ भी कर सकता है, लेकिन दर्शन भूमि के विषय में कुछ भी कुछ नहीं करे और कुछ दूसरा दूसरा करते रहे ये तो केवल पसंद नहीं है और कुछ नहीं है, तो सब
परलक्ष्य
जोर है तो अमर होने के लिए चेहरे को पिता है, क्या होना है तो अमर, लेकिन पिता है उसको ज्ञानियों ने लोक संज्ञा की है, और लोक संज्ञा के परिणाम को कालकूट विष कहा है, थोड़ा विष ने कहा है, तीव्र विष कहा है, तो वहां से नजर हटाना बहुत मुश्किल है, लोगों की ओर से नजर हटाना तो बहुत मुश्किल है, बहुत ताकत लगेगी जब यहाँ से खिसेगा। ताकत हम चाहे तो हमारे में ताकत तो बहुत है, हम कोई भी कार्य करना चाहे तो हम तो पक्षियों का आनंद सामर्थ्य का तो पिंड है, ताकत हमारे में नहीं है तो बात नहीं है, प्रयोग उनका होता है तो नुकसान भी बहुत होता है, तो प्रयोग सुनता है तो लाभ भी बहुत होता है, दोनों बात है।
ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान से नए से
संप्रदाय का विषय जो स्थापना है, चार निक्षेप है, अपना निक्षेप है, वो नहीं जानता विषय है, वो ही सच्चा जानता है कि कैसे स्थापना हो। वो बात अलग है, लेकिन स्थापना करने वाले कहा करता था, सबको स्थापना कर लेते हैं, सबको तो परमात्मा थोड़ी हो। तो जो विषय चलता है वो बात है, जो हम कहते हैं कि बंद का छेद नहीं करता, बंद का ज्ञान बंद का छेद, उसमें जो बंद का जानकारी मात्र से संतुष्ट होते हैं वो मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। करणानुयोग का ज्ञान होने के बावजूद भी उसका मोक्ष नहीं होता, उसका थोड़ा विस्तार करेंगे आचार्य महाराज, तो विषय का प्रारंभ करेंगे। पहले तो इसका विस्तार करेंगे कि क्या क्या बात मन के विषय में करता है। ज्ञान और समय ज्ञान का क्या अंतर है? सम्यक ज्ञान है वो आत्मा विमुख होता है और उसमें इसके कई प्रकार के गुण है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर है इसका प्रकरण है। ज्ञान को अनंत गुण का रूप है, वो मध्यस्थ भी है, सरल भी है, विशाल भी है, गहरा भी है, बहुत से जो गुण है सम्यक ज्ञान के वो अंतर्मुख भी है और वो ज्ञान स्वयं वितराग है, रास्ता राक्ष भिन्न हुआ है ना, उसका राक्ष योग छूट गया, विद्राग स्वरूप भी है, सम्यक स्वरूप भी है। सबसे बड़ा गुण तो इसकी सम्यकता का है, सम्यकता मैंने आत्मा विमुख है, तो वो सम्यक ज्ञान है। उस वको भी जैसा है वैसा विचार करके अनुभव करता है और पर को भी पर के रूप में जान करके पर का भी ज्ञान करता है। राग का राग का राग क्या होता है? जिसको राग रुचता है, जिसको राग सुहाता है, उसको राग का भी राग है। राग का अनुभव होता है, वो सुहाता है, वो राग का राग है। तो बार बार ऐसे राग का आस्वादन करने को उचित चाहता है, उसी को ही अनंतानुमंदी का राग भी बोला जाता है, क्योंकि उसको कितने हद तक चाहिए उसकी कोई सीमा रहती नहीं है। तो राग का राग है ये अनंतानुमंदी राग है, जो कभी भी ज्ञानियों को नहीं होता, ज्ञानियों को ये कभी नहीं होता, अज्ञानियों को ही होता है। और जो मुमुक्ष है वो राग का राग को तोड़ने का प्रयास में लगा हुआ है, उसको इसका खेद बन चुका है, तो उसका राग छूटेगा और वो मुमुक्ष मार्ग में प्रवेश करेगा। उसका अनुभव करता है, उसका रस टूटता है। गुरुदेव ने जो 144 गाथा पे प्रवचन किए उसमें स्वरूप निश्चय की बात चली है। गुरुदेव के वचनामृत में 19 नंबर का वो वचनामृत है, उसमें वो लिखा है कि स्वरूप निश्चय कब हो सकता है? आत्मा संपूर्ण निर्मल है, एक निर्मल पदार्थ है अपना स्वरूप, उसमें मलिनता के साथ में उसका निश्चय निर्णय नहीं होता है, चाहे शोषण कितना भी हो स्वरूप निर्णय नहीं हो पाएगा। जब राग रस कषाय रसमंद होता है तभी उसका निर्णय हो सकता है, क्योंकि मलिनता का भाग डिग्री है वो नीचे आती है। 19 नंबर के वचनामृत में होता है और ये पूरे वचनामृत 144 गाथा के प्रवचन में से दिया गया है, तो शताब्दी में है। पुरुषों की भूमिका में एक प्रोसेस चलता है जिसका फल कानून सूची में आकर के मोक्ष मार्ग में प्रवेश होने का चलता है। व्याख्या कहते हैं मूल व्याख्या आत्मा को मोक्ष में पहुंचाता है ऐसा समय ज्ञान है। ये समय ज्ञान का एक गुण है जो आत्मा को मोक्ष में जाता है ले जाता है। तो समय दर्शन को भी वाणी दिया श्रीमद जी ने कृपा जी ने समय दर्शन को भाषा दी तो बोल तो क्या बोलता है आजकल तो बोलने लगा समय दर्शन देख भैया हे जी मुझे तुम ग्रह एक बार भी ग्रहण कर लेगा ना तो फिर तुम्हें संसार में रहने की रुचि अगर हो जाएगी ना कभी होगी तो नहीं तो भी मैं तुम्हें पकड़ करके निषेध करके नियंत्रित करके मोक्ष में तान करके ले जाऊंगा तो रह नहीं सकोगे संसार में तुम रह नहीं सकोगे सोच लेना समझ लेना हमारे बिना तुमको केवल ज्ञान कैसे मिलेगा मिला हम थे तो मिला हमारा प्रभुत्व उतना है तो सम्यक दर्शन की और सम्यक दृष्टि के ग्रंथ ग्रंथों में बहुत प्रकार से बहुत शैली करते हैं महिमा की है पर बात तो मैं मानते हैं वो वंदना करने योग्य भी है इसलिए
तो खत्म होगी बात